Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bimba Shabda liya ya Grantakar ne. To Bimba Shabda se jaha bhi jise avastha mein bhi dekhoge na, वो ग्रहण कर लेना, जहां जहां एक दूसरे से आरोपित हो जाता है, गंदा बनाता है, तो गंदा बनाने वाला दूसरा होगा ना, है नहीं बात? अभी समझो बिंब है, दर्पण है, दर्पण के सामने खड़ा हो गया तुम, तो दर्पण से तुम्हारा मुख चमकेगा नहीं, क्यों? दर्पण के ऊपर मिट्टी का परमाणु गिरा है, मिट्टी के परमाणु से दर्पण गंदा हो गया, तो मुख देखने के लिए दर्पणस्थ जो मिट्टी है वो मिट्टी को हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मिट्टी को हटाना, और कैसे हटाओगे इसको? हाथ से हटाओ, कपड़े से हटाओ, पानी से हटाओ, कोई भी साधन अपनाओ। ऐसे आत्मतत्व के ऊपर जो अनात्मा का जो आरोप हो गया वो आपका उसमें ब्रह्मसूत्र में पहले आया, भाष्य में वहां पहले आया स्मृति रूप परत्र पूर्व दृश्य अभास अध्यास अध्यास लक्षण माया अध्यास अन्य में अन्य वस्तु का आरोप ही तो नहीं अध्यास है रस्सी में सर्प का आरोप हो गया अध्यास हो गया है बात सुक्ति में चांदी का अध्यास हो गया अध्यस्त वस्तु को जो हटाओगे तब जाकर अधिष्ठान का ज्ञान होगा अधिष्ठान का बोध होगा अध्यस्त वस्तु को कैसे हटाओगे है बात वो देखना पड़ता है अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त वस्तु हटेगा अधिष्ठान के ज्ञान कैसे होगा जिस कारण से उसमें सर्प देख रहा उस कारण से हटाओगे तो किस कारण से रस्सी में सर्प देख रहे हो चांदी सुक्ति में चांदी देख रहे हो किस कारण से तुम मरुभूमि में जल देख रहे हो किस कारण से आकाश में नीलिमा देख रहे हो किस कारण से तुम जो है ना जल माला में माला देख रहे हो भूसिद्रा देख रहे हो जमीन में किस कारण से अज्ञान के कारण से अविद्या के कारण से हमने रस्सी नहीं समझा तो उसको माला समझा भूसिद्रा समझा सर्प समझा है नहीं बात तो रस्सी विषय जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण हमने अन्य में अन्य का आरोपित कर लिया भ्रमित हो गया अन्य में अन्य का है बात तो अन्य में अन्य का जो आरोप हुआ उस आरोप को हटाए बिना समझ गए नहीं मूल तत्व का ज्ञान नहीं होगा और जब उसको ज्ञान नहीं होगा तो अविद्या की निवृत्ति भी नहीं होगी तो यहां इस बात को बता रहा है यथैव बिंबम मृदय उपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम देखो तेजोमयम भ्राजते तेजोमय चमकता है तेजोमय माने तेजस्वी होकर के भ्राजते माने चमकता है तेजोमय कब तत्सुधांतम सुधा अंतम अभी याद दो इसका सुधांतम का तीन अर्थ है सुधा अंतम सुधोतम सुधा सुधांतम सुधा वेदांत वेदांत विद्या को यहां सुधा कहते हैं बात वेदांत विद्या को सुधा कहते हैं वेदांत सुधांतम का वेदांत विद्या जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा चमकेगा अहम ब्रह्मास्मि के रूप में अथवा सुधोतम सुवर्ण को अच्छी तरह से धो दो सुवर्ण को अच्छी तरह धो दो मतलब क्या उसको ताफाओ दहन करो घर्षण करो पीड़न करो ऐसा करने से क्या होगा उसका दोष मिट जाएगा तो कैसा होगा भ्राजंतम भ्राजते चमकता है तेजोमय हो जाएगा मतलब है सुवर्ण के तेज को प्रकट कराने के लिए तीन साधन चाहिए क्या क्या चाहिए? तपना, घर्षण करना और ताड़न करना, पीटना, रू करते ना सोना ऐसे ऐसे करता है ना। सुधांतम सुधोतम सुधा अंत सुधा माने अमृत, अमृत माने मोक्ष न अमृत 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 की सुगंध थे पीने वाला अमृत। एक अमृत पिया जाता है आने बाद जो समुद्र से मिला निकला हुआ जो अमृत है एक अमृत है। हाँ रसायन के द्वारा पान किया जाता है अमृत आने बाद। एक अमृत गीता है, गीता अमृत महादूत आए ना, गीता के महात्म पढ़ते कि नहीं? गीता अमृतम, गीता अमृत कौन पान करते हैं? गीता अमृत महान सुधी, ये गीता अमृत को पान करने वाला सुधी, कुधी वाला नहीं। जिसका धी मानी बुद्धि सुधर गया है, शोधन हो गया है, शुभ्र हो गया है, शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति गीता रूपी अमृत का पान करेगा। सब नहीं पान कर सकते, सबको गीता अच्छी नहीं लगती है। गीता अमृत महान दूध है। पार्थ वत्स सुधी भुक्ता, बसरा गीता रूपी अमृत का पान कर ले। बसरा बनाया किसको? पार्थ को। सुधी भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत, ये गीता रूपी अमृत कैसा का महान है, महान गीता रूपी अमृत है ना, ये महान अमृत है। श्लोकार्धम अर्ध श्लोक पढ़ो, एक श्लोक पाठ करो कि आधा श्लोक पाठ करो कि पूरा पाठ करो, जिसको जैसे सामर्थ्य है रोज कम से कम एक श्लोक करो, नहीं तो कहते आधा श्लोक ही करो, और नहीं तो कल गीता गीता ही बोलकर सो जाओ। हाँ इसका इतना महत्व, गीता सुगीता कर्तव्य किमिन्ने शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनावश्य मुखपदार्थ विनिष्क्रिय। अभी देखो इसमें गीता को भगवान ने नहीं बोला, याद रखना। गीता वो कल्प कल्पांतर से चले आ रहा है, भगवान के मुखारविंद से स्वयं निकली हुई है। स्वयं निकली हुई है। अगर यदि गीता नहीं होती है कृष्ण का इतना महत्व भी नहीं बढ़ता। गीता के इनके भक्ता का जो महत्व बढ़ाया है ना, कौन बढ़ाया? गीता ने बढ़ाया, याद रखना। स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात विनिश्रित, पद्मनाभ के मुख रूपी कमल से गीता रूपी अमृत स्वयं निश्रित हुआ है। अपना आप परिश्रम करना नहीं पड़ा, ऐसा उसमें लिखता है। देखो ऐसे गीता का कहते हैं पूर्ण पाठ करना कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आधा करो, नहीं तो और तीन अध्याय करो, नहीं तो एक अध्याय करो, नहीं तो एक श्लोक करो, और आगे में कहते 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 ना आधा श्लोक कर, नहीं तो कल गीता गीता ही बोलो, गीता 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 करोगे त्याग आएगा। त्याग कर गीता 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 गीता, तो गीता अमृतम वो भी एक अमृत है। एक अमृत कान से पिया जाता है, गीता रूपी अमृत। कान से, और समुद्र से मिला हुआ अमृत रसनांजी से। ये गीता एक एक अमृत चंद्रमा में रहता है, चंद्रमा में रहते हैं ना गीता, और एक अमृत अमृत नागलोक में रहता है, ऐसा कहते हैं। एक अमृत रहता है दूसरा के ओठों में, तो कहते थे ठीक है चंद्रमा अमृत होता, चंद्रमा घिसता क्यों? क्यों क्षय हो जाता है? चंद्रमा क्षय को प्राप्त क्यों होता है? नागलोक में अमृत रह जाए तो वहां जहर कहां से आया? अमृत के सागर में नागलोक में अमृत है कि नहीं, तो होता जहर कहां से आया? तो कहते गीता अमृत कहां नहीं रहता है, गीता रहता है महापुरुषों के कंठ में। आनिवास महापुरुष महात्माओं के भगवत भक्तों के कंठ में, तो अमृत की परिभाषा अलग अलग है। तो यहाँ अमृत माने न मृत अमृत, जो मरे नहीं है उसका नाम है अमृत। तो मरता कौन नहीं है, तो संसार में आता सबको मरना पड़ता है। तो अजो नित्य शाश्वतम पुराणों न अन्य अन्य माने शरीर पड़ा कि नहीं, कहाँ आया? कम से कम दिया तो है। गीता के दूसरा जब है ना, नैनम छिन्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पापक न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुत छिद्वय मदायय मक्लिद शिष्य स नित्य सर्वगत स्थान रसभायम सनातन। तो तुम असल हो सनातन बा, अमृत स्वरूप हो। आपने अमृत को भूलने से हम अपने को बोलते हैं हम मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर मर गया शरीर, शरीर मरता है। क्यों? शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म नहीं है, मरेगा कहां से? जिसको जन्म ही नहीं है वो मरेगा कहां से? गाड़ा बना ही नहीं, फूटेगा कहां से? बनेगा तब ना फूटेगा। ऐसे जो आत्मा जन्मा ही नहीं तो मरेगा कहां से? तो क्यों बोलता कि मर रहा मर रहा मर रहा मर गया मर गया? शरीर मरा, शरीर नाश होता है। क्यों? ये पंचभूत का है, पंचभूत के कार्य में परिणाम होता है। जो जन्म लेगा जो भी पैदा होगा कभी ना कभी उसका विनाश होकर के ही रहेगा। हाँ, यहाँ जो भी आएगा मर्त्य लोक में सबको मरना पड़ेगा, इसका नाम है मर्त्य लोक। इस लोक का नाम मृत्यु लोक का हो, मर्त्य लोक का हो, भूलोक का हो, कोई भी कहो, यहाँ पैदा होता है तो मरता है। राम गयो रावण गयो गयो सर्व संसार। कोई आकर के यहाँ अजर मर रहा बोले सप्त ऋषि रह गया। सप्त ऋषि है ना? नहीं, सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण कृपस्व परशुराम से सप्त इतने चिरंजीवी न। अभी इन चिरंजीवी का आशीर्वाद लेकर के पछता रहे होंगे, इन लोग पश्चाताप हो रहा है, क्या चिरंजीवी होकर क्या करा, जंगल के अंदर पड़ा है कहीं, कोई ना देखता है ना सुनता है ना पूछता है। तुम्हारे देखो महात्मा लोग आए, महात्मा को जब पूजा होती है ना, बड़े बड़े महाराजों को पूजा होती है तो महात्मा खुश रहता है, और जब कोई आता नहीं जाता नहीं तो महात्मा कितने दुखी होकर के भक्तों के पास आ जाता है। भक्तों के पास आता है कि नहीं आता है? आपके पास कब आता है? जब एकांत में बैठे बैठे। तो ऐसे ही चिरंजीवी जो है ना जंगल में पड़ा हुआ, कहाँ हनुमान पड़ा हुआ है, कहाँ अश्वत्थामा पड़ा हुआ है, कहाँ जो है ना वो कृपाचार्य पड़ा हुआ है, अब इन लोग क्या करता होगा? कैसा कैसा वरदान प्राप्त कर ली? इसी तो अच्छा नया नया शरीर सर्वे भापा क्षण परिणाम रीति शक्ति परिणाम ही जो होते हैं ना संसार बदलता हुआ संसार में तो हर एक कल्प में रहेगा। ये तो अच्छा ब्रह्मा जी का जो है ना आयु को कल्प कहते, पूर्व कल्प और उत्तर कल्प। हाँ, ये कल्प है कितना? ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक दिन में कितना समय है? सौ साल में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और दिन के समय सृष्टि करते, रात्रि के समय सब समेट करके सो जाते हैं, आपके और हमारे जैसे ही है ब्रह्मा जी भी, परंतु उनका दीन कितना बड़ा है ये ख्याल है। चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मण दीनम उच्यते, 1000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक चतुर्युग समझते हैं ना, चार युग, एक एक युग का आयु कितनी है। हाँ, चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मण दिनम उच्यते, रात्रिजुग सहस्रांतम तीयो रात्रो विदोदना, गीता के अंदर देख लेना। गीता के अंदर भगवान ने बतला दिया चतुर्युग सहस्राण, 1000 चतुर्युग बीत जाए ब्रह्मा के एक दिन होता है। ऐसे कहते रात्रि युग है, रात्रि का समय है, तो दिन के समय सृष्टि रचना करते हैं और रात्रि के समय सब समेट करके सो जाते हैं। ऐसा जो चतुर्युग 4,32,000, 8,66,000, हाँ द्वापर युग का 8,00,000, और त्रेता युग का 12,00,000, 96,000, और सत्य युग का 17,00,000, कितना हजार हुआ। और हर चतुर्युग में राम आएगा, कृष्ण आएगा, वही महाभारत होगा, वही रामायण होगा, वही सीताहरण होगा, हर युग में, हर चतुर्युग में। यानी बात, वो त्रेता आएगा, वो त्रेता में राम आएगा, वो राम सीता आएगी, वो सीता को हरण करने के लिए रावण आएगा, वो रावण अशोक वाटिका ले जाएगा, फिर राम रावण का युद्ध होगा, फिर वो बंदर आएगा, हनुमान आएगा, सब लड़ाएगा। ये क्रम हमेशा होता है, समझे गए नहीं। हर चतुर्युग में होगा, ये याद रखना। अब 4,32,000 जो कलयुग है इसमें कितना बार आया होगा, इन लोग हिसाब लगाना। जब 12,64,000 वर्ष होगा एक एक युग का आयु, तो इस युग में कितना बार भगवान का अवतार लेना पड़ेगा, हर युग में लेगा कि नहीं लेगा। मनवंतर स्वयंभू सारसी उत्तम रोहिवत तावत साक्षुष मनु है, एक मनु का 71 चतुर्युग जो है आयु होता है, 71 चतुर्युग एक मनु का आयु होता है। एक मनु का आयु समाप्त होने से मनवंतर होता है, दूसरा मनु आएगा। पहले अभी आपका चल रहा है कौन सा मनु, आठवां मनु, इसका नाम क्या है, भविष्यत मनु, बोलो ना, वैवस्वत मानो, स्वयंभू सारसी उत्तम रोहिवत ताम चाक्षुष हाँ, और वैवस्वत, ये वैवस्वत मनवांतर चल रहा है। हाँ, आज जब वैवस्वत मनवांतरे चतुर्विंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम शरण है, भारतवर्षे भरत गंजे जम्बू दीपे आर्य भारत का देशांतर गते मोहमयी नगरे प्रेमपुरी आश्रम है सत्संग हम करीशे समझे गए नहीं। पहले आप लोग संध्या वंदना करते हैं ना, संध्या वंदना के समय संकल्प किया जाता है, और कोई शुभ कर्म करना, यज्ञ करना, दान करना हुआ भी किया जाता संकल्प। वो संकल्प में सबको नाम लेना पड़ता है, अध्याय तैसे ब्रह्मण द्वितीय परार्ध, ब्रह्मा का दूसरा परार्ध चल रहा है, भविष्य मनंतर चल रहा है, आठवां कलियुग चल रहा है, 28वां अष्टाविंशति तमे कलियुगे, 28वां कलियुग है ये, और इसका भी केवल 4,000 वर्ष व्यतीत हुआ है। 28वां कलियुग चल रहा है ऐसा, और बीत गया सब, 27वां बीत गया, अभी 28वां चल रहा है। 4,32,000 एक कलियुग की आयु है, 5,000 गया, और कलियुग का प्रथम चरण है, अभी दूसरा तीसरा चौथा चरण। अभी भागवत सुनते भागवत में नहीं बताया, एक डेढ़ बीता आदमी हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा आदमी, होते 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 इतना बड़ा हो जाएगा। कौन सा कलियुग है, सब ही आता जगह हुआ है ना, सब पुराणों की कथा है ना सब। हाँ चलिए फिर क्या करें अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।